7 जुलाई रविवार। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। अमरीकी प्रतिबंधों के बीच ईरान ने यूरेनियम उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की।
The American economic sanctions have crippled the Iranian economy.
कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के विधायकों के इस्तीफे के बाद गहराया राजनीतिक संकट।
देखिए, अपने घर की समस्याएं बाजार में ले आकर पराया घर पे डालना, ये कोई राजनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं है।
मध्य प्रदेश में पुलिस प्रमुख ने दिया लड़कियों के बारे में विवादास्पद बयान। और क्या वाकई मेरठ से हिंदुओं का हो रहा है पलायन?
सारी दुल्हने मेरे सामने की आई हुई और सारी औलाद की मेरे सामने की पैदाइश है। आज तक मैंने कोई यहाँ कांड नहीं देखा, कोई मैंने वजह नहीं देखी।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। यूरोपीय देशों ने ईरान से अपील की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को ना तोड़े। इससे पहले ईरान ने कहा था कि वो परमाणु समझौते की एक और शर्त तोड़ रहा है और अब तय सीमा से ज्यादा यूरेनियम उत्पादन करेगा। ईरान ने कहा था कि वो चाहता है कि परमाणु समझौता बना रहे, लेकिन यूरोप के देश अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहे हैं। ईरान अपनी इस घोषणा से समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं यूरोपीय देशों पर दबाव बनाना चाहता है ताकि वो अमरीका को आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने के लिए कहे। अमरीका पिछले साल परमाणु समझौते से अलग हो गया था। इसके बाद अमरीका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। एक दर्जन से ज्यादा विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार संकट में आ गई है, लेकिन पार्टी सिर्फ आधा दर्जन विधायकों को मनाने की कोशिश कर रही है जो कि पार्टी के प्रति ईमानदार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कर्नाटक सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने का खबर सामने आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को ट्वीट कर कहा, जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए और जिम्मेदारी लेते हुए मैंने महासचिव पद से अपना इस्तीफा राहुल गांधी को सौंप दिया है। आम चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी का प्रभार सौंपा गया था, जहां पार्टी को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा था। कैलिफोर्निया में पिछले दो दिन में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसम ने अमेरिका की संघीय सरकार से मदद मांगी है। न्यूसम का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान हुआ है और जिंदगियों को बचाने और संपत्ति और पब्लिक हेल्थ की रक्षा के लिए उन्हें वॉशिंगटन की सहायता की जरूरत है। इस बीच भूकंप विज्ञान केंद्र के रॉबर्ट डे ग्रूट का कहना है कि राज्य में इससे भी बड़ा भूकंप आने की संभावना है। लगभग हर 150 साल में सैन एंड्रियास फॉल्ट पर बड़े भूकंप आते हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में जहां मैं रहता हूं, वहां हमारे पास के सैन एंड्रियास फॉल्ट के सेगमेंट में 300 साल से भी ज़्यादा वक्त से भूकंप नहीं आया है। ये हमारे लिए एक रहस्य है और हम इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो भूकंप आता है तो वो इस वाले भूकंप से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ये थे भूकंप विज्ञान केंद्र के रॉबर्ट डे ग्रूट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग में हजारों लोग फिर से विवादित प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग उन जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां चीन से पर्यटक आते हैं ताकि वो चीन के लोगों से अपने अभियान के बारे में बात कर सकें। इससे पहले जो प्रदर्शन हुए थे वो हांगकांग की संसद के पास हुए थे। इन प्रदर्शनों को चीन में ज़्यादा कवरेज नहीं मिला क्योंकि वहाँ की मीडिया को सख्ती से सेंसर किया जाता है। प्रत्यर्पण बिल को फिलहाल रोक दिया गया है। इस बिल के तहत लोगों को मुकदमे के लिए चीन प्रत्यर्पित किया जाएगा। चीन ने बीबीसी की ओर से पेश किए गए उन सबूतों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम बच्चों को उनके माता पिता से जानबूझकर अलग किया जा रहा है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में लंदन में चीन के राजदूत ने कहा कि बच्चों को जबरन अलग नहीं किया जा रहा है। इटली के गृहमंत्री मात्यो सल्विनी के एक आदेश को नज़रअंदाज करते हुए प्रवासियों से भरी एक बचाव नाव इतावली द्वीप पर उतर गई। इस नाव पर 41 प्रवासी सवार थे और इसे इटली की ही एक चैरिटी संस्था चलाती है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। मेरा नाम है संदीप सोनी।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के बीच ईरान ने अपना यूरेनियम उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया है। ईरान का कहना है कि वो परमाणु समझौते के पक्ष में है, लेकिन यूरोप के देश अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और अब ईरान पर हताशा हावी हो गई है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
ईरान ने साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत यूरेनियम उत्पादन की तय सीमा को लांघने की घोषणा की है। ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा कि ईरान अब भी चाहता है कि परमाणु समझौता बना रहे, लेकिन यूरोप के देश अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहे हैं। अमेरिका ने साल 2018 में एक तरफा फैसला लेते हुए इस परमाणु समझौते को तोड़ दिया था। इसके बाद अमेरिका ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। ईरान ने बीते मई महीने में यूरेनियम का उत्पादन शुरू कर दिया था। यूरेनियम का इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने और परमाणु रिएक्टरों में भी किया जा सकता है। इससे परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं। शर्तों के हिसाब से ईरान के पास तय सीमा से अधिक यूरेनियम मौजूद है। ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा कि ईरान अपना यूरेनियम उत्पादन बढ़ाएगा। ईरान ने यह घोषणा तब की है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी से बात कर परमाणु समझौते के उल्लंघन पर चिंता जताई है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार प्रोफेसर फवाज गर्जेस का मानना है कि ईरान की सत्ता पर हताशा हावी है।
अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। ईरान में महंगाई 40% से ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी भी 30% बढ़ी है, ब्रेड और दूध जैसी जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ईरान की मुद्रा रियाल में भी भारी गिरावट आई है।
ये थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर फवाज के शब्द। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का कहना है कि यूरोप के देशों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे परमाणु समझौता बच सके। ईरान इनकार करता है कि वो यूरेनियम संवर्धन परमाणु हथियारों के लिए बढ़ा रहा है। ईरान ने परमाणु समझौते पर बाकी हस्ताक्षरकर्ता देश चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन को 60 दिनों का वक्त दिया था कि वो अमरीकी प्रतिबंधों से बचाएं। अराकची ने कहा कि 60 दिनों की समय सीमा खत्म हो चुकी है, इसलिए ईरान यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने जा रहा है। ईरान ने वादा किया था कि वो अपने यूरेनियम के भंडार 98% तक घटाकर 300 किलोग्राम तक करेगा, लेकिन उसने जानबूझकर इसे तोड़ने का फैसला किया और ये उसके उठाए गए कई कदमों में से एक है।
अमरीकी प्रतिबंधों के बीच ईरान ने यूरेनियम उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की। रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के विधायकों के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट पल पल गहराता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस खुद को आश्वस्त दिखाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी पर विधायकों को मुंबई ले जाकर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इससे इनकार किया है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट सुने।
शनिवार को विधायकों के इस्तीफे के शॉक ट्रीटमेंट के बाद कांग्रेस के नेता हालात से निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन नेताओं का सारा फोकस उन विधायकों पर है जो कांग्रेस वफादार माने जाते हैं, जैसे कि पूर्व गृह मंत्री रामलिंग रेड्डी और उनके साथी एसटी सोमशेखर, बैराती बसवराजू, मुनीरत्ना इत्यादि। इनमें से एक विधायक अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर बीबीसी को बताया कि वो इस्तीफा गुस्से में दिए हैं, क्योंकि उनसे भी जूनियर सदस्यों को मंत्री बना गया था गठबंधन सरकार में। कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने सुना है कि जिन विधायकों को मुंबई ले जाया गया है उनको दिल्ली भी ले जाएंगे अमित शाह से मिलवाने के लिए। इनमें से कितने विधायक अपना इस्तीफा वापस लेंगे उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सही तस्वीर 12 जुलाई को ही मिलेगी जब विधानसभा का अधिवेशन शुरू होगा। एक बात जो स्पष्ट हो गई है वो ये है कि बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अभी तक करीब 11 राज्यों में बीजेपी विरोध पक्ष के विधायकों को दल बदल करते आ रहे हैं। ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्द। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना कुछ और ही है कि कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं के इस्तीफे का कारण उन पक्षों के अंदरूनी मतभेद की वजह से है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव ने कहा,
देखिए अपने घर की समस्याएं बाजार में ले आकर पराया घर पे डालना ये कोई राजनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं है। आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ध्यान में आएगी कि जो लोग असेंबली में अपने सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है।
दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी के नेताओं अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा है कि उनका ऑपरेशन कमल 4.0 जल्द से जल्द सफल हो जाएगा। उनका भरोसा इसलिए भी है क्योंकि आधा दर्जन से भी ज्यादा विधायक उनसे संपर्क में हैं और उनका मानना है कि 12 जुलाई को जब विधानसभा का अधिवेशन शुरू होगा उस दिन मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस बीच राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि इन विधायकों में ऐसे विधायक भी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खास समर्थक हैं और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि सिद्धरामैया खुद इस गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश में हैं। सिद्धरामैया का उत्तर ये था, इसके लिए तो बीजेपी ही कारण है। हमारे थोड़े विधायक असंतुष्ट थे क्योंकि उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, इसीलिए वो परिस्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। बहरहाल अभी हर किसी की आंखें मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पर होंगी क्योंकि वो थोड़ी ही देर में अमेरिका से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। आज रात को JDS की विधायक दल की बैठक के बाद कल सुबह मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलवाई गई है। कल क्या हो सकता है उसके लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
मध्य प्रदेश में पुलिस प्रमुख ने लड़कियों के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया है। पुलिस महानिदेशक VK सिंह ने लड़कियों के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि आजकल लड़कियां ज्यादा स्वतंत्र हो रही हैं। इस पर विपक्ष के साथ साथ सजग महिलाओं और लड़कियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भोपाल से शूर नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में देश में बरसों से पहले नंबर पर है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के DGP VK सिंह ग्वालियर में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। उस दौरान उन्होंने जो कहा उसने प्रदेश में नया विवाद छेड़ दिया है। VK सिंह ने कहा,
लड़कियां स्वतंत्र ज्यादा हो रही हैं, स्कूलों में कॉलेजों में जा रही हैं, तो आज के समाज में लड़कियों की बढ़ती स्वतंत्रता एक तथ्य है और ऐसे में उनका जो सामना हो रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है दूसरे लड़कों के साथ, वो भी एक सच्चाई है। ऐसे केसेस में वृद्धि देखने में मिली है जहां पे घर से चली जाती हैं और फिर रिपोर्ट होती है किडनैपिंग की।
उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। भाजपा के प्रवक्ता राहुल कोठारी कहते हैं,
देखिए भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व होता है, प्रदेश की सुरक्षा और प्रदेश का मनोबल बढ़ाए रखने का काम उनके पास होता है, तो ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से उनको बचना चाहिए। और चूंकि वो स्टेट पुलिस के पूरे चीफ होते हैं और अगर इस तरह से वैसे भी महिला अपराध में जो बढ़ोतरी स्टेट के अंदर हो रही है उसको बचा नहीं पा रहे हैं, इस तरह के बयान वो देंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो एक अच्छा माहौल मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ा था उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि बड़ा गहरा आघात लगा है।
वहीं इस बयान ने महिलाओं के लिए काम करने वालों को भी हैरान कर दिया है। महिलाओं और बच्चियों के बीच काम करने वाली श्रुति कुशवाहा कहती हैं,
हम जानते हैं हम एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां महिलाओं के प्रति अपराध का आंकड़ा किस कदर बढ़ा हुआ है हम सब जानते हैं और पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है इन अपराधों को कंट्रोल में करने की, लेकिन DGP अगर इस मानसिकता के हैं जो कह रहे हैं कि लड़कियां स्वतंत्र अधिक हो रही है और इसको जब वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्कूल कॉलेज जाना भी इनके नजर में अगर स्वतंत्रता का ही एक पैमाना है तो आप सोच सकते हैं कि किस मानसिकता के साथ पुलिस काम करेगी अगर उनके सामने कोई भी महिलाओं को लेकर महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई अपराध का मामला आएगा तो।
लेकिन पुलिस के मुखिया की इस बात को अलग अलग पैमाने पर देखा जा रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाली आयुषी सक्सेना की राय इस मामले में कुछ इस तरह है।
इंटरेक्शन की बात हम करें, जैसे हम सोशल मीडिया और इस तरह की जब हम बात करते हैं तो उन केसेस में वाकई ये हो रहा है और ये क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है, ये मुझे पता है, कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें वाकई लड़कियां क्योंकि बहुत इंटरेक्शन करती हैं लड़कों से एफबी पे व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि बहुत सारा ये जो सोशल एक वर्चुअल वर्ल्ड जो हमने ही क्रिएट किया है ना, तो उसके चलते ये बयान शायद कहीं हद तक उस पर लागू होता है। लेकिन अगर हम बात ये कर रहे हैं और अगर ये बयान वाकई इस तरह से आया है कि स्कूल कॉलेजों में लड़कों से इंटरेक्शन करने के कारण दोस्ती बढ़ती है और आगे जाते हैं और फिर वो किडनैपिंग के लिए होता है, तो ये बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि कोई भी इसमें सही बात है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो मध्य प्रदेश में 2016 में बच्चों के और महिलाओं के खिलाफ अपराध और अपहरण के 6016 मामले सामने आए हैं। शुरह नियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पिछले कुछ दिनों से पलायन का मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा है। बताया गया था कि यहाँ के कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ से हिंदू समुदाय के लोग डर के मारे अपने मकानों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए विवश हो रहे हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने मेरठ और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया और वहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है।
ऐसा तो कुछ नहीं, हमें 57 साल हो गए रहते, हमें तो ना किसी ने मारा ना किसी ने भगाया। अब आप देखो ये मकान है सामने, इनके 5 लड़के हैं, 5 लड़कों ने जो थे अपने अपने मकान बना लिए। अब जब वो चले गए, अब बुढ़ी बुढ़िया यहाँ रह के क्या कर।
80 साल के देशराज मेरठ की प्रहलाद नगर कॉलोनी की एक गली में छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। जिस सामने वाले घर की ओर वो इशारा कर रहे थे वो बंद पड़ा था और उसके मालिक भी अपने मकान को बेचने की कोशिश में लगे हैं। प्रहलाद नगर मेरठ शहर के बीचों बीच स्थित वही मोहल्ला है जो पिछले करीब 1 हफ्ते से हिंदुओं के कथित पलायन को लेकर चर्चा में है। इस पलायन के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि ऐसा मुसलमानों के खौफ के कारण हो रहा है, क्योंकि इलाके में मुस्लिम आबादी काफ़ी बढ़ गई है।
घरों का गंदगी डाल देनी, लड़के खड़े हो गए आपस में गाली बता कर हमारी बहन बेटी को छेड़ा खानी, तो लड़कियां परेशान, हर समय बाहर निकलने को, स्कूल जाने को परेशान, धीरे धीरे परेशान हो गए, एक एक करके हिंदू बेच के आज 10% रह गए। वो कहते नहीं किसी को, वो तंग इतना करते हैं आप नहीं चला जाता है।
दरअसल प्रहलाद नगर को बंटवारे के बाद एक शरणार्थी कॉलोनी के रूप में बसाया गया था, जहाँ पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को रहने के लिए जगह दी गई थी। इसके पीछे पहले से ही मुस्लिम बहुल मोहल्ला इस्लामाबाद बसा हुआ था। इस्लामाबाद से प्रहलाद नगर में प्रवेश के लिए जो सड़क है वो बहुत चौड़ी नहीं है, जबकि सड़क के किनारे की गलियां तो बेहद तंग हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो प्रहलाद नगर 3 तरफ से मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है और यहाँ की आबादी भी मिश्रित है। मकानों के बेचे जाने और खरीदे जाने के तमाम दावे किए जा रहे हैं और ये सच है कि पिछले कुछ सालों में कई मकान बेचे गए हैं, लेकिन मकान बेचने की वजह कुछ और भी है। स्थानीय निवासी दिनेश कुमार कहते हैं,
पलायन वाली बात तो नहीं लगती है ये, बाकी ये कि जो स्टैंडबाजी है ये तो हो ही रही है, और जो है आना मोहल्ले में बदतमीजी करना और निकल जाना, या छीटाकसी करना, या किसी को रोको कुछ कहो तो मार पिटाई करना।
कुछ केस वेस दर्ज कराए जाते हैं इस मामले में, छेड़खानी और
कोई केस दर्ज नहीं होता, बस वो यहीं कहीं निमट जाती है, मोहल्ले में कुछ होता ही नहीं है, मोहल्ले में केस दर्ज कोई नहीं होता।
खैर, इस विवाद को तो तात्कालिक रूप से हल करने के लिए प्रशासन ने प्रहलाद नगर से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी है। मेरठ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार बताते हैं,
उनका तात्कालिक समाधान किया गया है और वहाँ पे एक बैरियर लगा के परमानेंट पिकेटिंग की व्यवस्था की जाएगी, वहाँ CCTV कैमरा भी लगाया जाएगा। इंक्रोचमेंट की समस्याएं हैं, इलीगल शॉप्स की समस्या है, इस संबंध में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।
लेकिन प्रहलाद नगर और इस्लामाबाद के कुछ मुस्लिम लोग इन खबरों से बेहद आहत हैं।
ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। अब छोटे छोटे मकान अगर वो बड़े उन्हें जरूरत पड़ रही है बेच रहे हैं तो क्या करेंगे वो, क्यों जबरदस्ती किससे लिया ये बताएं जरा।
ये मकान जो है अपनी मर्जी से लोग बेच के जा रहे हैं, ना कोई जबरदस्ती इनसे कह रहा कि आप मकान हमें दो, और ऐसा भी कुछ नहीं है। मकान छोटे पड़ गए हैं, मकान नीचे पड़ गए, इस वजह से इन लोगों को मकान जो है अपने बेचने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के इनके मकान खरीद रहे हैं। हमारा प्रहलाद नगर से बहुत पुराना मामला है और हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं।
सारी दुल्हनें मेरे सामने की आई हुई और सारी औलाद की मेरे सामने की पैदाइश है। आज तक मैंने कोई यहाँ कांड नहीं देखा, कोई मैंने वजह नहीं देखी खराबी की। हमें ऐसा लग रहा है कि बदमाशों ने कोई कार्रवाई करी।
मेरठ में एक कॉलेज के प्रिंसिपल पद से रिटायर होने के बाद इफ्फत शफीक ने भी पटेल नगर में मकान खरीदा था। शफीक कहती हैं,
मेरी समझ में नहीं आ रहा, अक्सरियत में आप लोग हैं, आप क्यों डरने लगे इन लोगों से।
दरअसल पलायन का मुद्दा पिछले हफ्ते काफी तेजी से उठा था और उसे कुछ राजनीतिक दलों की ओर से भी हवा देने की कोशिश की गई, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी तरह के पलायन से इनकार कर दिया तो अब पलायन की बात कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और कई बार इस इलाके के विधायक रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं कि अकेले प्रहलाद नगर से ही हिंदू नहीं गए हैं, बल्कि मेरठ में ऐसे दर्जनों मोहल्ले हैं।
जो तो शहर के 43 ऐसे मोहल्ले हैं जो पूर्णतः हिंदू थे, पूर्णतः मुस्लिम हो गए, और 16-17 मोहल्ले हैं जो इस प्रक्रिया का भाग बन चुके हैं, धीरे धीरे वो खाली हो रहे हैं।
लेकिन वाजपेयी भी इसे पलायन नहीं मानते।
मैं किसी कीमत पर इसको पलायन का मुद्दा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। स्वेच्छा से जाने का मुद्दा है, परिवार के दबाव में, बच्चों के दबाव में, कानून व्यवस्था ना संभाल पाने के कारण इसकी असुरक्षा व्याप्त हो रही, वो कारण है और कोई कारण इसका नहीं है।
वहीं थापर नगर के रहने वाले एडवोकेट इनके छाबड़ा इसकी वजह ये बताते हैं।
पलायन नहीं है तो और क्या है, दहशत की वजह से माइग्रेशन नहीं कह रहे आप समझिए ना, आप उनके बेनामे निकलवा लीजिए और उनका आधार कार्ड ले लीजिए, सबके आधार कार्ड मेरठ के ही मिलेंगे, दे पीपल आर लिविंग ओनली इन मेरठ। मुख्यमंत्री को वास्तविकता नहीं पता है, वो वहाँ लखनऊ में बैठे हुए, उनको जो सरकारी अधिकारी सूचना देंगे उसी पर बेस्ड होंगे।
बहरहाल इस बात के गवाह सरकारी दस्तावेज भी हैं कि मेरठ के कई मोहल्लों में हिंदुओं ने मकान बेचे और मुसलमानों ने खरीदे और दूसरी जगह गए, हालांकि दावे इसके उलट भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल लोगों के बीच अभी भी अनुत्तरित है कि ये पलायन नहीं तो और क्या है। समीर आत्मज मिश्र, BBC मेरठ।
अब बात भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की। असम में जापानी इंसेफेलाइटिस की वजह से बीते दिनों कम से कम 50 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य में सभी सरकारी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
माने बीमार तार 15 दिन आगत जोर होइसिले।
ये आवाज असम के लेंगराई चाय बागान में रहने वाली बिनती तांती की है, जिनकी 15 साल की बेटी अनिता की दिमागी बुखार के कारण मौत हो गई थी। बेटी की मौत से बिनती को गहरा सदमा लगा है, वो सिसकते हुए कहती है, बुखार से कोई मरता है क्या? मुझे सैकड़ों बार बुखार हुआ है लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, फिर अनिता क्यों मर गई? ऐसा ही हाल बिहार से यहाँ अपने मायके घूमने आई सीता देवी का है। उनका 15 साल का बेटा रंजन पिछले कई दिनों से असम मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के ICU में भर्ती है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अस्पताल के बाहर खड़ी सीता देवी घबराहट में कहती है,
पहले दिन ना मंगलवार को 25 तारीख तो याद नहीं, मतलब 25-26 का जैसा थोड़ा ही हमें माथा दर्द हुआ, तो बोला कि हमको माथा दर्द हुआ ही हमें, तो हम तेल लगा दिया, उसके बाद में बोला बुखार लगा है तो बुखार का दवा छू रहा है, तो बुखार नहीं आ रहा है। सुबह में मुंह टेढ़ा होने लगा, आँख सब मतलब ऐसे कर लगा, हाथ सब टेढ़ा होने लगा, गिर गया दो बार झटका का जैसे, मतलब मेरी नहीं होता है, मुख से गाज उज खून सब गाज उज फेंका है, तो ब्लड में दिया है मुख से, तो हम लोग लेकर डॉक्टर के पास चला आया।
असम के कुल 33 जिलों में केवल कोकराझाड़ को छोड़ दें तो इस समय सभी जिले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से प्रभावित है। अब तक राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस के 190 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। जापानी बुखार से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा कहते हैं,
मेडिकल डिपार्टमेंट और डॉक्टर नर्स और पैरामेडिकल।
असम में इस समय जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए ट्रांसमिशन सीजन से गुजर रहा है, इसलिए स्थिति से निपटने के लिए कई आपातकालीन उपाय किए गए हैं। चिकित्सकों, नर्स और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसके अलावा सभी को अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर बने रहने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई भी कर्मचारी अनधिकृत अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कर्तव्य का आपराधिक अपमान मानते हुए मामला दर्ज किया जाएगा। ये थे स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा के शब्द। जापानी बुखार से पीड़ित अपनी 65 साल की माँ का इलाज करा रहे नवज्योति स्वास्थ्य विभाग के कामकाज से खुश नहीं दिखते।
खतरनाक रूप बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, जो डॉक्टर लोग ने बोला है, हम लोग को पहले पता नहीं था ऐसा ऐसा बुखार आता है, आदमी को ऐसा परेशान करते है, लेकिन आज मेरा माँ को हो गया तो इसीलिए पता चल पोस्ट के अंदर सब सेंटर मतलब सब सेंटर है, तो वहाँ का डॉक्टर रोज नहीं आता है क्योंकि वो गांव में नहीं रहता है, दूसरे जगह से वो आता है। मेडिकल ऐसा सुविधा नहीं, कोई एक बिस्तर भी नहीं है चुलाकर पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए।
आखिर असम में हर साल जुलाई महीने में जापानी बुखार का वायरस कहां से आता है? इस सवाल का जवाब देते हुए डिब्रूगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक उदयन कुमार बरुआ कहते हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस के वायरस का शुरुआती वाहक बगला पक्षी को माना जाता है। अभी इस मौसम में ये जंगली पक्षी हमारे इलाके में पहुंचते हैं, इस तरह जब इन पक्षियों को मच्छर काटते हैं उससे वो संक्रमित हो जाते हैं, फिर वही मच्छर पालतू सुअर को काटते हैं जिससे जेई वायरस पालतू सुअर के शरीर में चला आता है। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर लोग अपने घरों में सुअर पालते हैं और इनसे ही इंसान के शरीर में जापानी इंसेफ्लाइटिस का वायरस पहुंचता है। ये थे डिब्रूगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक उदयन कुमार बरुआ के शब्द। जापानी बुखार के संक्रमित रोगियों का इलाज कर रही डॉक्टर रीमा मोनी दोले कहती है, दरअसल मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के गृह जिले डिब्रूगढ़ को जापानी इंसेफ्लाइटिस के नजरिए से एंडेमिक क्षेत्र माना गया है। देश में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बाद डिब्रूगढ़ का असम मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल एकमात्र अस्पताल है जहां जेई के लिए सभी सुविधाओं से लैस 60 बिस्तरों वाला एक जेई ब्लॉक बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को कम किया जा सके। दिलीप कुमार शर्मा, BBC, लेंगराइटी स्टेट, असम।
और अब खेल समाचार। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आदेश जी, क्रिकेट विश्व कप और विंबलडन में आज सन्नाटा है।
जी हाँ, ये कहिए कि तूफान से पहले का सन्नाटा है, क्योंकि अगर विंबलडन की बात की जाए तो विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बीच भले ही उसकी चमक जुगनू जैसी हो गई है, लेकिन काफ़ी बड़े उलटफेर हुए जहाँ शायद किसी की नज़र नहीं गई, लेकिन कल नज़र रहेगी कॉरी गॉफ कर, क्वालिफायर खिलाड़ी 15 साल उम्र और चौथे दौर में भिड़ेंगी सिमोना हालेप से। देखिए किस तरह से कमाल की खिलाड़ी उभर कर सामने आई हैं। दूसरी तरफ बात की जाए अगर पुरुष एकल वर्ग में रॉजर फेडरर, राफेल नडाल या फिर सर्बिया के नोवाक जोकोविच की, तो चौथे दौर तक तो उन्हें कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि महिला एकल वर्ग में काफ़ी बड़े उलटफेर देखने को मिले। जापान की नाओमी ओसाका, जिन्हें दूसरी वरीयता हासिल थी, बाहर हो गई, लेकिन कल नज़र रहेगी सदाबहार सेरेना विलियम्स पर और देखने कि उनका कारवा कहाँ तक बढ़ता है। और रही बात है क्रिकेट की, तो भारत में जिसे धर्म की तरह पूजा जाता है अब इसका जोश और उफान पर होगा, क्योंकि 11 तारीख को जब पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ सामना होगा तो नजर रहेंगी भारत के रोहित शर्मा, के एल राहुल, ऋषभ पंत, धोनी, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या पर। सभी जानते हैं इनका नाम क्योंकि हाउसहोल्ड नाम है। और अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो कप्तान केन विलियमसन, उसके साथ साथ रॉस टेलर, मार्टिन गप्टिल का बल्ला थोड़ा खामोश है, देखना फाइनल में क्या करते हैं। मुनरो भी थोड़े से ढीले से चले हैं, लेकिन गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट किस तरह का झटका देंगे ये देखना होगा। और फर्ग्यूसन और निशम और सेंटनर, पिच से मदद मिली तो ठीक है, वरना तो जिस तरह से इंग्लैंड के विकेट हैं ऐसा लग रहा है कि भारत में IPL के सपाट विकेट आइए और रन बनाइए। लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए भारत के रोहित शर्मा की, शुरुआत में जरूर कैच उनके टपके और उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरह से मैच लपके उसका फ़ायदा भारत को, लेकिन पूत के पांव पालने में ही देखे थे क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली ने जब उन्होंने पहली बार रोहित शर्मा को खेलते देखा था।
रोहित शर्मा कह रहे हैं कि मैं खेलने आया हूँ, रन बनाने आया हूँ और कप घर ले जाने आया हूँ। तो गजब की बैटिंग, बहुत बहुत साल पहले 2006-2007 में मैंने उनको पहली बार देखा था और वो पहली उनकी बड़ी पारी थी एक डोमेस्टिक क्रिकेट में, देवधर ट्रॉफी में, वहाँ पे उदयपुर में, तब उन्होंने दिखा दिया था। और मुझे याद है नॉर्थ जोन के कप्तान थे, उन्होंने कहा था कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। तो हम सोचते थे अरे भाई ये तो पहला ही मैच है, लेकिन अब समझ में आता है कि क्यों उन्होंने उस वक्त ये बात कही।
लंबी रेस का घोड़ा, लेकिन लगाम कहीं लग ना जाए, दिल कहीं थम ना जाए, थाम के बैठना होगा, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला होना था राउंड रोबिन लीग मुकाबले में, लेकिन बारिश के कारण वो मुकाबला धुल गया था। दोनों टीमों के तुरुप के पत्ते कैसे एक दूसरे के खिलाफ होंगे ये तो मामला वहीं रहा, एक दूसरे को सिर्फ दूर से ही देखा। दूसरी तरफ दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से होगा, वो दूर है, लेकिन पहले देखते हैं कि दो दिन बाद जब मंगलवार को ये दो टीमें पहले सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी तो क्या होगा।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। यूरोपीय देशों ने ईरान से अपील की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को ना तोड़े। इससे पहले ईरान ने कहा था कि वो परमाणु समझौते की एक और शर्त तोड़ रहा है और अब तय सीमा से ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करेगा। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस जीत तोड़ मेहनत कर रही है। एक दर्जन से ज्यादा विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार संकट में आ गई है। कैलिफोर्निया में पिछले दो दिनों में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद राज्य के गवर्नर गैविन न्यूसम ने अमरीका की संघीय सरकार से मदद की मांग की है। हांगकांग में हजारों लोग फिर से विवादित प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग उन जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहाँ चीन से पर्यटक आते हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण भारतीय समय अनुसार हर दिन की तरह सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। शुभ रात्रि।